नमस्कार मित्रों, आज का यह कार्यक्रम ओशो डायनेमिक मेडिटेशन को समर्पित है। ओशो डायनेमिक मेडिटेशन आधुनिक मनुष्य को ध्यान उपलब्ध करवाने के लिए ओशो के दिए हुए प्रमुख योगदानों में से एक है, एक अमूल्य योगदान है।
ओशो डायनेमिक मेडिटेशन प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से 21 मार्च तक पूरे विश्व में एक साथ किया जाता है। छोटे बड़े ग्रुप्स बनाकर जगह जगह इसका आयोजन होता है।
जीसस से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभु का राज्य कैसा है, क्या है उसका रूप नाम? तो जीसस ने कहा, प्रभु का राज्य एक बीज की भांति। जीसस उसी बीज की बात कर रहे हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान है वह बीज। बीज अपने आप में सार्थक नहीं होता, बीज तो एक साधन है, बीज तो वृक्ष होने की संभावना है। बीज कोई स्थिति नहीं, बीज तो यात्रा है। जैसे बीज वृक्ष तक पहुंच के सफल हो जाता है, क्योंकि फिर फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, वही सफलता है। ऐसे ही ध्यान का बीज जब वृक्ष बन जाता है और फल फूल लग जाते हैं, वही परमात्मा है। बीज की स्थिति को ठीक से समझ लेना जरूरी है। तुम परमात्मा के संबंध में तो निरंतर पूछते हो, वो पूछताछ बेकार है, क्योंकि वृक्ष की क्या पूछताछ करना जब बीज ही न संभाला। और बिना बीज को बोए तुम वृक्ष को देख भी कैसे सकोगे? परमात्मा कोई वाह घटना नहीं, तुम उसे देख लो, वो तुम्हारी परिष्कृत स्थिति, वो तुम्हारा ही विकास है। तुम दूसरे के परमात्मा को न देख सकोगे। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जब बीज टूटेगा और वृक्ष बनेगा, तभी तुम उसे देख सकोगे। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, वे लाख उपाय करें तो भी तुम्हें परमात्मा को दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा है। और अभी बीज है, वृक्ष नहीं बना, बीज में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब बीज फूटेगा, विकसित होगा, तुम प्रकट होगे, खिलोगे, तुम्हारा दिया जलेगा, तभी तुम जानोगे कि परमात्मा। इसलिए नास्तिक को हराना बहुत मुश्किल है। वस्तुतः नास्तिक को कोई कभी नहीं हरा पाया। इसका कारण ये नहीं कि नास्तिक सही, इसका कारण यह है कि वो गलत ही प्रश्न पूछ रहा है। जो भी जवाब दिए जाएंगे वो व्यर्थ होंगे। वो पूछता है, ईश्वर को दिखाओ, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर तुम में छिपा है, ईश्वर पूछने वाले में छिपा है, और दूसरे का ईश्वर नहीं दिखाया जा सकता। वो आंतरिक घटना है। जब तुम्हारा बीज टूटेगा तभी तुम जान पाओगे। अभी तुम बीज की भांति हो, लेकिन तुमने इसे समझा, तुम बाहर खोज रहे हो, और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम्हारा बीज भीतर ही पड़ा रहेगा, अंकुरित न होगा, क्योंकि बीज के लिए वैसे ही पानी चाहिए, भूमि चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रेम चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे को, जब तुम भीतर आंख मोड़ोगे, जब तुम्हारा ध्यान भीतर बरसेगा और तुम्हारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ेगी, तभी बीज को प्राण मिलेंगे, तभी बीज जीवंत होगा, अंकुरित होगा। ध्यान बीज है। मेरे पास लोग आते हैं, वे पूछते हैं, अशांति है, कैसे शांत हो जाए? एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन आया, उसे देख के ही मैं कुछ कहने को था, लेकिन मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही उसने सवाल किया। उसने कहा, अब मेरी सहायता आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने पूछा, क्या है समस्या? उसने कहा, बड़ी जटिल समस्या है, दिन में कोई 10, 20, 25 बार, कभी और भी ज्यादा स्नान करने की बड़ी तीव्र आकांक्षा पैदा होती, मैं पागल हुआ जा रहा हूं, बस यही धूम सवार रहती, कुछ मेरी सहायता करो। मैंने पूछा कि स्नान तुमने किया कब से? उसने कहा, जब तक मुझे याद आता है, मैं स्नान की झंझट में कभी पड़ा ही नहीं। स्नान न करोगे और स्नान करने की आकांक्षा पकड़ेगी तो समस्या स्नान नहीं है, समस्या तुम। अशांत हो, तुम्हें पता नहीं कि तुमने ध्यान कभी नहीं किया, तुम उस झंझट में कभी पड़े ही नहीं, और अशांति तुम मिटाना चाहते हो, और ध्यान के स्नान के बिना वो कभी ना मिटेगी, वो तलफ। ध्यान भीतर का स्नान है, जैसे शरीर ताजा हो जाता है स्नान के बाद, धूल कूड़ा करकट शरीर से बह जाता है, स्वच्छता आ जाती, ऐसे ही ध्यान भीतर का अंतरात्मा का स्नान। और भीतर जब सब ताजा हो जाता तब कैसी अशांति, तब कैसा दुख, कैसी चिंता, तब तुम पुलकित होते हो, प्रफुल्लित होते हो, तुम्हारे पैरों में घुंघर बंध जाते, तुम्हारा जीवन एक नृत्य हो जाता। उसके पहले तुम उदास हो, थके हो, परेशान हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी अशांति के कारण बाहर है तो तुम भ्रांति में हो। तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है कि ध्यान के बीच को तुमने वृक्ष नहीं बनाया। तुम हजार उपाय करोगे, धन मिल जाए तो अशांति ठीक हो जाएगी, पुत्र हो जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो, शरीर हो, लंबी उम्र हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन अशांति न मिटेगी। वस्तुतः तो जितनी ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी उतनी ही तुम पाओगे कि अशांति और भी सघन होकर दिखाई पड़ने लगी। गरीब आदमी कम अशांत होता है, अमीर ज्यादा अशांत हो जाता है। अमीरी से अशांति क्यों बढ़ जाती, बढ़ती नहीं, होता तो गरीब भी अशांत है, लेकिन शरीर की ही भूख, शरीर की क्षुधा को निपटाने में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि अपने भीतर की अशांति को देखने योग्य शक्ति भी नहीं बचती। अमीर की बाहर की जरूरतें पूरी हो जाती तो सारी शक्ति बचती और भीतर की जरूरत ख्याल में आती। गरीब भी उतना ही अशांत है, लेकिन अशांति को जानने की सुविधा नहीं है। अमीर को अशांति कांटे की तरह चुभने लगती, वही वही दिखाई पड़ती। तुम जिस दिन सब जरूरतें पूरी कर लोगे उस दिन तुम अचानक पाओगे असली जरूरत एक थी, वो ध्यान। बाकी सब जरूरतें शरीर की थी, तुम्हारी नहीं। ये सूत्र कहता है ध्यान बीज, तुम्हारी महत यात्रा में, जीवन की खोज में, सत्य के मंदिर तक पहुंचने में ध्यान बीज। और ध्यान क्या है जिसका इतना मूल्य, जो कि खिल जाएगा तो तुम परमात्मा हो जाओगे, जो सड़ जाएगा तो तुम नारक की जीवन व्यतीत करोगे। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, जहां होश तो पूरा हो और विचार बिल्कुल ना हो। तुम तो रहो लेकिन मन न बचे, मन की मृत्यु ध्यान। अभी तुम तो हो ही नहीं, मन ही मन, इससे उल्टा हो जाए, तुम ही तुम बचो और मन बिल्कुल ना बचे। अभी सारी ऊर्जा मन पिए जा रहा है, अभी जितनी भी तुम्हारी जीवन की शक्ति है वो मन चूस लेता है। तुमने अमरबेल देखी, वृक्षों को पकड़ लेती, फिर वृक्ष सूखने लगता है और बेल जीने लगती और बेल फैलने लगती, और बेल बड़ी मजेदार है, वो ठीक मन जैसी है, उसमें कोई जड़ें भी नहीं, उसकी कोई जड़ नहीं, क्योंकि उसे जड़ की जरूरत ही नहीं है, वो दूसरे के शोषण से जीती है, वृक्ष को सुखाने लगती है, खुद जीने लगती है। और ठीक हिंदुओं ने उसे अच्छा नाम दिया अमर बेल, वो मरती नहीं, जब तक भी उसे शोषण मिलता रहेगा वो अनंत काल तक जी सकती। ऐसा ही तुम्हारा मन है, वो अमर बेल, वो मरता नहीं, वो अनंत काल तक जी सकता, जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। और मजा ये कि उसकी कोई जड़ नहीं, कोई बीज नहीं, उसका अस्तित्व बेजड़, मर जाना चाहिए उसे इसी वक्त, लेकिन मरता नहीं, वो शोषण से जीता है। और तुम्हारा मन तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए, तुम तो बिल्कुल दबी गए हो अमर बेल में। सारी जीवन ऊर्जा मन ले लेता है, कुछ बचता नहीं। तुम दीन दरिद्र, तुम सूखे सूखे जीते हो। मन तुम्हें उतना ही जीने देता है जितना जरूरी है मन के लिए। बेल भी वृक्ष को पूरा नहीं मारती, क्योंकि पूरा मारेगी तो खुद मर जाएगी। उतना बचा के चलती है जितना जरूरी है। मालिक भी गुलाम को पूरा नहीं मार डालता, उतना भोजन देता है जितना गुलाम के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हें बस उतना ही देता है जितना तुम बने रहो, अन्यथा 99% पी लेता है। 1% तुम हो, 99% मन है। ये गैर ध्यान की अवस्था है। 99% तुम हो जाओगे, 1% मन होगा, ये ध्यान की अवस्था है। और अगर 100% तुम हो गए और मन शून्य हो गया, ये समाधि की अवस्था है। तुम मुक्त हो गए, बीज पूरा वृक्ष हो गया। अब कुछ पाने को ना बचा, जो भी पाया जा सकता था पा लिया। सब संभावनाएं सत्य हो गई, जो भी छिपा था वो प्रकट हो गया। तब तुम्हारी सुगंध से अस्तित्व भर जाता, तब तुम्हारा नर्तन दूर दूर कोनों तक चांदारों तक सुना जाता है। तब तुम ही पुलकित नहीं होते, तुम्हारे साथ पूरी विश्व की प्राणधारा पुलकित होती है। तब अस्तित्व में एक उत्सव आ जाता है। जब भी कोई एक बुद्ध पैदा होता है, सारा अस्तित्व उत्सव से भर जाता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे बीज को वृक्ष बनाने के लिए आतुर है। ध्यान का अर्थ है जहां मन ना के बराबर रह जाए, समाधि का अर्थ है जहां मन बिल्कुल शून्य हो जाए। तुम ही तुम बचो। और शिव का ये सूत्र कहता है ध्यान बीज, इसलिए ध्यान से शुरू करना पड़ेगा। अभी तो होश बेहोश जागते सोते मन ही तुम्हें पकड़े हुए। रात सपने चलते हैं, दिन विचार चलते हैं, उठते बैठते मन का ऊहापोह चलता रहता। और बड़े आश्चर्य की तो बात यह कि सार उसमें कुछ भी नहीं। कितना ही ये ऊहापोह चले, मन से कुछ मिलता नहीं। क्या तुमने पाया है? इतने दिन सोचकर कहां तुम पहुंचे? इसे भी तो सोचो, इस तरफ भी ध्यान दो कि इतनी यात्रा करने के बाद कौन सी मंजिल मिली। सोच सोच के क्या पाया? एक दार्शनिक था, बड़ा दार्शनिक, इमैनुअल कांट। सांझ घर की तरफ आ रहा था, एक छोटे से लड़के ने उसे रास्ते पर रोका और कहा, अंकल मैं आपके घर गया था, कल पिकनिक पे जा रहे हैं और आपके कैमरे को मांगने गया था। आप तो घूमने गए थे, नौकर मिला उसने बिल्कुल मना कर दिया। क्या ये उचित है कि नौकर मना कर दे? बच्चा क्रोध में था। कांट ने कहा कि बिल्कुल अनुचित, मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? आओ मेरे साथ। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। पहुंचे घर, कांड में बड़ी डांट डपट की नौकर की और बच्चा पुलकित होता रहा। कहा कि मेरे रहते तू मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे से भी कहा, तू बोल मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं अंकल। और इस आदमी ने बड़ी बेहूदगी से इंकार किया। और तब इन्होंने कांड में उस बच्चे से कहा कि अब तुझे मैं बताता हूं कि कैमरा मेरे पास नहीं, ये सारी खुशी बच्चे की, ये सारी पुलक, ये मिलने की आशा, सब शोरगुल, और आखिर में पता चलता है कि कैमरा उसके पास नहीं। ये तुम्हारे मन की दशा है। जीवन भर दौड़ोगे, चिल्लाओगे, आशा बांधोगे, श्रम करोगे और आखिर में मन कहेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास नहीं। मन ने सदा यही कहा है, उसके पास है भी नहीं, इसलिए मन सदा आशा बंधाता है और मन सदा कहता है आज तो नहीं कल, कल निश्चित। मन से ज्यादा आश्वासन देने वाला और कोई भी नहीं, और तुम हो मूर्ख कि अगर मन के पास होता तो वो आज ही दे देता, वो कल की कह रहा है और तुम मान लेते हो, और तुम कितनी बार मान चुके हो, और हर बार कल आता है और मन फिर कल पे टाल देता है। लेकिन ये तुम्हारी बेहोश आदत हो गई, तुम कल की बात सुनने को आदि हो गए हो, ये आदत इतनी गहरी हो गई कि तुम उस पर पुनः विचार नहीं करते। बेहोशी में भी, रात के सपने में भी मन तुम्हें कल पर टालता रहता है। मुल्ला नसुद्दीन बीमार था, पत्नी ने खबर की तो मैं उसके घर गया, भारी बेहोश में, बुखार तेज था, लगता था 105-106 डिग्री बुखार होगा, बिल्कुल बेहोश पड़ा है, आंख से जल रहा है। मैंने पूछा कब से ये दशा है, मैंने कहा भी अभी कोई घड़ी भर से। मुल्ला नसुद्दीन के मुंह में मैंने कहा थर्मामीटर लगा के देखो, मुंह में थर्मामीटर लगाया, उस बेहोश अवस्था में भी उसने क्या कहा, उसने कहा माचिस प्लीज, चेन स्मोकर, एक सिगरेट से दूसरी जला के सदा पीता रहा, 105 डिग्री बुखार में भी, और सब तो याद नहीं, कोई सुध नहीं, लेकिन मुंह में थर्मामीटर डालते से उसे याद सिगरेट की आती, माचिस प्लीज। तुम मर भी रहे होगे तो भी तुम्हारी दशा यही होगी, माचिस प्लीज। तुम्हारा मन पुरानी आदत के अनुसार अपनी बेहोशी में भी ताने बाने बुनता रहता, मरते क्षण भी तुम मन से ही भरे रहोगे। तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, तुम मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, मन तुम्हारे साथ है, और जहां भी मन तुम्हारे साथ है वहां धर्म से तुम्हारा संबंध न छोड़ेगा। मुसलमान फकीर हुआ, हाजी मोहम्मद साधु पुरुष था, एक रात उसने सपना देखा कि वो मर गया है और एक चौराहे पे खड़ा है जहां से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को आता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है, एक फरिश्ता, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो जरा भी घबराया नहीं, जीवन भर साधु था, हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पढ़ी, 60 बार हज की, इसीलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया था। अकल के जाके द्वार खड़ा हो गया देवदूत के सामने, देवदूत ने कहा तुम्हारा नाम, उसने कहा हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया नर्क की तरफ, ये रास्ता। हाजी मोहम्मद ने कहा आप समझे नहीं शायद, कुछ भूल चूक हो रही, 60 बार आज की है। देवदूत ने कहा वो व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते हाजी मोहम्मद, तुमने उसका काफी फायदा जमीन पे ले लिया, तुम बड़े अकड़ गए उसके कारण। कुछ और किया है, हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए, जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा रोज 5 बार की नमाज पूरी पूरी पढ़ता था, उस देवदूत ने कहा वो भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तुम जरा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे, जब कोई भी ना होता था तुम जल्दी खत्म कर देते थे। तुम्हारी नजर परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे, वो नमाज छूटी थी। ध्यान में परमात्मा न था, वे लोग थे। लोग देख रहे हैं तो जरा ज्यादा नमाज, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूं, हाजी मोहम्मद। वो बेकार गई, कुछ और किया। अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ जिंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया, नमाज छिपके पढ़ने लगा, किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं नमाज तक बंद कर दी, बुढ़ापे में सठिया गया। लेकिन उसने इसका कोई खंडन न किया। वो चोरी छिपे नमाज पढ़ता, वो नमाज सार्थक होने लगी। कहते हैं मर के हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। तुम्हारा मन प्रार्थना भी करेगा तो भी प्रार्थना न होने देगा। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा। अपने ध्यान की चर्चा मत करना, उसे छिपाना, उसे संभालना, जैसे कोई बहुमूल्य हीरा मिल गया हो और उसे तुम छिपाते हो, उछालते नहीं फिरते। संपदा को तुम गढ़ा देते हो, ऐसे ही तुम ध्यान को गढ़ा देना। उसकी तुम चर्चा मत करना, उससे अहंकार मत भरने लगना, अन्यथा मन की बेल वहां भी पहुंच गई और वो चूस लेगी। और जहां मन पहुंच जाता है वहां धर्म नहीं, और जहां मन नहीं पहुंचता वहां धर्म। मन बहिर्मुखी, उसका ध्यान दूसरे पे होता, अपने पे नहीं होता। ध्यान अंतर्मुखता है। ध्यान का अर्थ है अपने पे ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। ध्यान करो तुम, अगर दो पैसे गरीब को देते भी हो तो तुम देखते हो कि लोग देखते या नहीं। तुम मंदिर बनाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हो अपने नाम का। तुम दान करते हो तो अखबार में खबर छपवाते हो। सब व्यर्थ हो जाता है। हाजी मोहम्मद होकर तुम पहुंच ना पाओगे। तुमने कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, इस सब की फेहरिस्त संभाल के मत रखना। परमात्मा की दुनिया कोई दुकानदार की दुनिया नहीं। वहां हिसाब नहीं काम आता। वहां तुम हिसाब लेके गए कि वहां तुम हारोगे। हिसाब संसार में काम आता है। लेकिन तुम देखो जैन मुनि हर वर्ष छपवाते हैं कि इस बार उन्होंने कितने उपवास किए, ये तो वर्षा काल में कितने दिन भूखे रहे, कितने व्रत नियम लिए, वो हिसाब रख रहे। ये दुकानदार ही है जो मंदिरों में बैठ गए। इनकी बुद्धि से गणित का छुटकारा नहीं हुआ और इनका ध्यान इनका उपवास सब व्यर्थ जा रहा है। ये हाजी मोहम्मद हुए जा रहे हैं। नहीं, तुम बाहर की चिंता मत करना कि दूसरे लोग तुम्हें धार्मिक समझते हैं या नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं ये बात विचारनी ही नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों से तुम्हारे मन का संबंध है, तुम्हारा जरा भी नहीं। जिस दिन मन समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम असंग हो जाओगे। मन ही दूसरों से तुम्हें जोड़े हुए, और जब तक मन तुम्हें संसार से जोड़े हुए तब तक तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। जिस दिन तुम संसार से टूट जाओगे, मन खो जाएगा, उसी तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। इधर हुए असंग, वहां हुआ संग। यहाँ टूटा नाता, वहां जोड़ा नाता। यहां से हुई आंख बंद, वहां खुली। ध्यान बीज है, और ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य।
आइए ओशो डायनामिक ध्यान विधि के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं और फिर चल पड़ते हैं। गेट सेट गो। जब नींद टूटती है तो पूरी प्रकृति जीवंत हो उठती है। रात गई, अंधेरा मिट चला, सूरज उगाया और सब कुछ चेतन और सजग हो गया। तो यह पहला ध्यान वह ध्यान है जिसमें तुम्हें कुछ भी करते हुए सतत जागरूक, चेतन व होशपूर्ण बने रहना है। ओशो डायनामिक ध्यान 1 घंटे का है और इसमें 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स। इसे अकेले किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में इसे अन्य लोगों के साथ करना सहयोगी होगा। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए अपने आसपास के अन्य लोगों को ना देखें और पूरे समय अपनी आंख बंद रखें। बेहतर होगा कि आंखों पर पट्टी लगा लें। ध्यान से पहले पेट खाली हो व ढीले आरामदेह कपड़े पहने। ओशो डायनामिक ध्यान ओशो के निर्देशन में तैयार किए गए संगीत के साथ किया जाता है। यह संगीत ऊर्जागत रूप से ध्यान में सहयोगी होता है और ध्यान विधि के हर चरण की शुरुआत को इंगित करता है।
पहला चरण 10 मिनट। नाक से अराजक श्वास लें और सारा ध्यान श्वास बाहर छोड़ने पर रखें। श्वास भीतर लेने का काम शरीर स्वयं कर लेगा। आप जितनी तीव्रता और जितनी शक्ति लगा सकते हैं लगाएं, जब तक कि आप श्वास प्रश्वास ही ना बन जाएं। अपने शरीर की स्वाभाविक गतियों को ऊर्जा से भर जाने दें। ऊर्जा को चरम बिंदु तक पहुंचते हुए महसूस करें, लेकिन इस चरण में उसे संभाल कर रखें। दूसरा चरण 10 मिनट विस्फोटित हो जाएं, जो कुछ भी बाहर फेंकने जैसा हो उसे बाहर बह जाने दें, पूरी तरह से पागल हो जाएं, चीखें चिल्लाएं कूदें कंपें नाचें गाएं हंसें, पूरी तरह उद्वेलित हो जाएं, कुछ भी बचाकर न रखें, पूरे शरीर को गति करने दें, अपने रेचन को शुरुआत देने के लिए प्राय थोड़ा अभिनय सहयोगी होता है, फिर जो भी कुछ हो उसमें अपने मन को हस्तक्षेप न करने दें। ध्यान दें, शुरू में थोड़ा अभिनय जरूरी होता है, सहयोगी होता है, लेकिन जब रेचन होना शुरू हो जाता है तो मन को हस्तक्षेप न करने दें। आपके भीतर से जो कुछ भी उठ रहा है उसे देखें, अपनी पूरी समग्रता उड़े लें। दूसरा चरण या मारो काटो मारो हट जाओ यहां से सब हट जाओ भागो या तीसरा चरण अपने हाथों को सीधा ऊपर उठाए हुए हु मंत्र को जितनी गहराई से हो सके उतनी गहराई से चिल्लाते हुए ऊपर नीचे कूदें। हर बार जब भी आपके पैर के तलवे जमीन को छुएं, उस आवाज को गहरे अपने काम केंद्र पर चोट करने दें। आपके पास जितनी शक्ति हो लगा दें, स्वयं को पूरी तरह थका दें। चौथा चरण 15 मिनट ठहर जाएं, जहां हैं जिस स्थिति में हैं वहीं जम जाएं, शरीर को किसी भी तरह से व्यवस्थित न करें, थोड़ी सी भी खांसी या हलन चलन आपके ऊर्जा के प्रवाह को क्षीण कर देगी और पूरा प्रयास खो जाएगा। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसके साक्षी बने। पांचवा चरण 15 मिनट उत्सव मनाएं, आनंदित हों और पूर्ण के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करते हुए संगीत के साथ नाचें। अपने आनंद को पूरे दिन अपने साथ लिए हुए चलें।
कुछ सुझाव? आप जिस जगह ध्यान कर रहे हैं, वहां यदि आवाज करना संभव न हो, तो यह मौन विकल्प प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरे चरण में आवाजें मुंह से निकालने के बजाय रेचन को अपनी शारीरिक गतियों से होने दें। तीसरे चरण में हु ध्वनि की चोट मौन रूप से भीतर ही भीतर की जा सकती है। और पांचवा चरण अभिव्यक्तिपूर्ण नृत्य बन सकता है। कुछ सुझाव हैं डायनेमिक ध्यान के गहरे रेचन के परिणाम स्वरूप शरीर पर कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ओशो बताते हैं यदि तुम्हें दर्द हो तो उसके प्रति सचेत हो जाओ, कुछ करो मत। किसी चीज पर ध्यान देना एक तलवार जैसा है, वह हर चीज को काट डालता है। तुम केवल दर्द पर ध्यान दो। कुछ भी हो, तुम्हें अगर पेट में या सिर में तेज दर्द हो रहा है, यह संभव है क्योंकि ध्यान में पूरा शरीर बदलता है। ध्यान शरीर के रसायन को बदल डालता है, नई चीजें होने लगती हैं और पूरा शरीर एक अराजकता में आ जाता है। कई बार पेट प्रभावित होगा क्योंकि पेट में तुमने बहुत से मनोभाव दबा लिए हैं और ध्यान में वे सभी उद्वेलित हो जाते हैं। कई बार तुम्हें उल्टी जैसा लगेगा, चक्कर आएंगे। कई बार तुम्हें सिर में बहुत तेज दर्द होगा क्योंकि ध्यान तुम्हारे मस्तिष्क के सारे ढांचे को बदल रहा है। जल्दी ही चीजें ठहर जाएंगी लेकिन कुछ समय के लिए सब कुछ अस्वस्थ होगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम केवल सिरदर्द को देखो, उसके दृष्टा बन जाओ, भूल जाओ कि तुम करता हो और धीरे धीरे सब कुछ ठहरता चला जाता है। इतने सुंदर और प्रसादपूर्ण ढंग से कि जब तक यह घटित ही ना हो जाए तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। सिर से दर्द तो चला ही जाएगा क्योंकि जो ऊर्जा दर्द पैदा कर रही थी उसे अगर देखा जाए तो वह सुख बन जाती है। जो ऊर्जा दर्द पैदा कर रही थी उसे अगर देखा जाए, दृष्टा बना जाए तो वह सुख बन जाती है। ऊर्जा तो वही है, पीड़ा और सुख एक ही ऊर्जा के दो आयाम हैं। इसके साथ ही ओशो इस बात के लिए भी आगाह करते हैं कि यदि अप्रिय लक्षण दर्द, पीड़ा या चक्कर आना 3-4 दिन के ध्यान के बाद भी चलते रहते हैं तो केवल उन्हें देखते न रहें, चिकित्सक का परामर्श लें। यह बात सभी ओशो ध्यान विधियों के साथ लागू होती है। ऑनलाइन ओशो डायनेमिक मेडिटेशन के वीडियो भी उपलब्ध हैं। इनको जरूर देखें। इसके स्टेप्स को भलीभांति समझकर ही करना चाहिए। www.osho.com/meditation साइट पर जाकर भी हम इसको सीख सकते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन के पांचों चरणों की व्याख्या के विषय में जानने के लिए आप पुस्तक ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति को www.osho.com/ebooks पढ़ सकते हैं। इसकी व्याख्या बुक के तीसरे खंड में ध्यान की विधियां टॉपिक पर पेज नंबर 39 पर पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम की अगली कड़ी भी डायनेमिक मेडिटेशन को ही समर्पित रहेगी। सुनना ना भूलें। तो मित्रों, ओशो के प्रेम के साथ एनलाइटमेंट के लिए तैयार हो जाइए। कोई सुबह नहीं गंवानी है। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Show, I feel you take me to the depth of my being.